तकफीरी आतंकवाद।
प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम तकफीरी आतंकवाद की एक अन्य कड़ी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित है स्वाति और अहमद अब्बास का सलाम स्वीकार करें। आज के कार्यक्रम में हम आले सऊद से वहाबियत के रिश्तों के बारे में चर्चा करेंगे।
श्रोताओं, पिछले कार्यक्रम में वहाबियत के सलफी व तकफीरी विचारों के मुख्य स्रोत इब्ने तैमिया के जीवन, उनके विचारों और दृष्टिकोणों की समीक्षा पूरी हुई। इब्ने तैमिया के बाद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने उनके विचारों को पुनर्जीवित किया और उनमें इस्लाम की उच्च शिक्षाओं के बारे में अपने भ्रष्ट विचारों को भी जोड़ दिया। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के विचार और आस्थाएँ पूरी तरह उन इस्लामी शिक्षाओं से विरोधाभास रखती थीं जिनका प्रचार पैगंबर इस्लाम किया करते थे। उनका मानना था कि केवल वे और उनके अनुयायी ईश्वर को मानने वाले और मुसलमान हैं, जबकि अन्य इस्लामी मतों के अनुयायी काफिर व अनेकेश्वरवादी हैं। कुल मिलाकर ये कि आस्था के मामले में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की किताबें, जो शायद 200 पृष्ठों से अधिक न हों, ज्ञान से अधिक वाद पर आधारित हैं और उनमें ज्ञान की प्रचलित शैलियों को अपनाने और तर्क संगत बातें करने के बजाय विरोधियों को काफिर सिद्ध करने और उनकी हत्या को वैध ठहराने पर जोर दिया गया है।
आज वहाबी धर्मगुरु मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को बहुत बड़ा ज्ञानी दिखाने के लिए काफी प्रयास करते रहे हैं। उनके विचारों की समीक्षा में अनेक किताबें लिखी जा रही है और इसी तरह उनके बारे में विभिन्न प्रकार के सम्मेलन आयोजित होते हैं। राजनीतिक शक्ति से वहाबियत के रिश्तों के बारे में बात किए बिना वहाबियत को पहचाने का काम अधूरा रहेगा। अन्य इस्लामी मतों के विपरीत वहाबियत लोगों में लोकप्रियता के कारण नहीं फैली, बल्कि तलवार की ताकत और राजनीति से उसके रिश्तों ने उसके प्रसार का मार्ग प्रशस्त किया है।
दूसरी ओर वहाबियत की हिंसक व तकफीरी प्रवृत्ति के कारण शक्ति और हिंसा इसमें रच बस गई है और विरोधियों के खिलाफ, जिनमें सभी मुसलमान थे, राजनैतिक शक्ति के दुरुपयोग के संबंध में उसके विचार मजबूत हुए हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि अगर अहमद बिन हम्बल का सलफीवाद हदीसों के दुरुपयोग पर आधारित था और इब्ने तैमिया का सलफीवाद आस्थाओं के गलत इस्तेमाल पर निर्भर था, तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के सलफीवाद को उसकी विशेषताओं के दृष्टिगत राजनैतिक सलफीवाद कहा जा सकता है। वहाबियत की उत्पत्ति की पहचान के संबंध में राजनीति व सत्ता की ओर संकेत करना आवश्यक है और इस स्थिति में इस अहम सवाल का जवाब दिया जा सकता है कि मुसलमानों में लोकप्रियता न रखने और उनके विरोध के बावजूद किस प्रकार वहाबियत अपना अस्तित्व जारी रखे हुए है।
मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को अपने पिता की मृत्यु तक, जो हम्बली धर्मगुरुओं में से थे, अपनी आस्थाओं को प्रकट करने का अधिक अवसर नहीं मिला। उनके सबसे कड़े विरोधी व आलोचक उनके घर वाले और शहर के धर्मगुरु थे। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के पिता व भाई हमेशा इस बात की कोशिश करते थे कि उनसे व उनके विचारों से दूर रहें। उनके भाई सुलेमान ने उनकी गलत आस्थाओं की कड़ी आलोचना की है। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने अपने पिता की मौत के बाद ब्रिटिश सरकार की सहायता से वर्ष 1153 हिजरी कमरी में अपने विचारों को प्रकट करना शुरू किया। अलबत्ता पहले ही चरण में उन्हें हुरमेला क्षेत्र के आम लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा और निकट था कि लोग उनकी हत्या कर देते। विवश होकर उन्हें अपने पैतृक नगर उयना लौटना पड़ा।
उयना लौटकर उन्होंने अपनी आस्थाएं वहां के शासक उस्मान बिन अहमद बिन मुअम्मर को बताई। शासक ने उन्हें स्वीकार कर लिया और फिर दोनों ने समझौता किया कि इसके बाद वे दोनों एक दूसरे के सहायक रहेंगे। इस प्रकार शासक ने इस बात की अनुमति दी कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब खुलकर अपनी आस्थाओं को पेश करें। उयना के शासक से अपने संबंध को अधिक मजबूत बनाने के लिए मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने उसकी बहन से विवाह कर लिया। इस तरह दोनों के रिश्ते बहुत मजबूत हो गए। उस काल में उयना के आसपास अनेक मस्जिदें और सहाबियों अर्थात पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के साथियों के मज़ार मौजूद थे, जिनमें से एक मज़ार दूसरे खलीफा के भाई जैद बिन खत्ताब का भी था।
मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने उस्मान बिन अहमद के कुछ सिपाहियों को लेकर उन मज़ारों पर हमला कर दिया और उस स्थान को मिट्टी में मिला दिया। तारीख नजद के लेखक का कहना है कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने अपने हाथों से जैद बिन खत्ताब के मज़ार को ध्वस्त किया। इस पर क्षेत्र के लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और उनके विरुद्ध उठ खड़े हुए थे, उनकी बातों को रद्द कर दिया। लोगों ने अल एहसा, बसरा और मक्के व मदीने के धर्मगुरुओं को पत्र लिख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की शिकायत की। उन धर्मगुरुओं ने उस्मान बिन अहमद बिन मुअम्मर को पत्र लिखा और उसे शेख की हत्या का आदेश दिया। उयना के शासक ने विवश होकर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को शहर से बाहर निकाल दिया।
वहाबियों के शेख ने इसके बाद दरिया के क्षेत्र को अपना ठिकाना बनाया, जो पैगंबरी का झूठा करने वाले मुसैलमा कज़ाब का जन्मस्थल था। इस क्षेत्र में जाने के बाद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने दरिया के शासक और आले सऊद के पूर्वज मोहम्मद बिन सऊद से संपर्क किया और उससे भी वही समझौता किया जो उन्होंने उयना के शासक से किया था। मोहम्मद बिन सऊद इस समझौते से खुश था, लेकिन उसने शेख के सामने दो चिंताएँ पेश की। एक ये कि अगर हम आपकी मदद करेंगे और कुछ नगरों पर कब्जा कर लेंगे तो हमें भय है कि आप हमें छोड़कर किसी और स्थान की ओर चले जाएंगे। दूसरे ये कि दरिया में हमारा एक कानून है और वो ये कि जब फल पकने का मौसम आता है तो हम लोगों से कर वसूल करते हैं। हमें भय है कि आप कर वसूल करने पर प्रतिबंध न लगा दें। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने जवाब में कहा कि मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा और ईश्वर हमें जो विजय प्रदान करेगा उसमें हमें इतना मिल जाएगा कि तुम इस प्रकार के साधारण से कर से आवश्यकता मुक्त हो जाओगे।
दरिया के शासक ने दोनों परिवारों के रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए अपने बेटे अब्दुल अजीज की शादी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की बेटी से कर दी और इस प्रकार उन दोनों के बीच पारिवारिक संबंध स्थापित हो गए, जो आज भी एक बड़े क्षेत्र में बाकी है। इस समझौते के बाद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने नजद के सभी कबीलों के सरदारों और लोगों को पत्र लिखा और उन्हें नया मत स्वीकार करने का निमंत्रण दिया। कुछ लोगों ने निमंत्रण स्वीकार किया, जबकि कुछ ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। इसके बाद वहाबियों के शेख ने इब्ने सऊद की सहायता से कुफ्र, अनेकेश्वरवाद और बिदअतकर्ताओं के विरुद्ध जिहाद के नाम पर एक लश्कर बनाया और मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। उन्होंने मुसलमानों के गांवों और शहरों पर हमले करके लोगों का जनसंहार किया और उनकी संपत्ति लूट ली।
इस प्रकार वहाबी मत अस्तित्व में आ गया, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि ये सारी लड़ाइयाँ उन लोगों के खिलाफ थीं जो सभी ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले, ईश्वर की उपासना करने वाले और ईश्वरीय दायित्वों का पालन करने वाले थे। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने कशफ शुबहात नामक एक पुस्तिका में कई बार मुसलमानों को काफिर, अनेकेश्वरवादी, मूर्ति पूजक, धर्म भ्रष्ट, मिथ्याचारी, ईश्वर के शत्रु, अज्ञानी और शैतान कहा है। उनका कहना है कि हम मुसलमानों के इस समय के अनेकेश्वरवादी अतीत के अनेकेश्वरवादियों और मूर्ति पूजकों से अधिक कट्टर हैं, क्योंकि वे लोग आराम के समय दूसरों को ईश्वर का समकक्ष ठहराते थे और कठिनाई के समय में एकेश्वरवादी हो जाते थे, जबकि हमारे काल के अनेकेश्वरवादी दोनों परिस्थितियों में दूसरों को ईश्वर का समकक्ष ठहराते हैं।
वहाँ भी चार चीज़ों की बहुत अधिक बातें करते हैं, कुफ्र अर्थात ईश्वर का इनकार, शिर्क अर्थात अनेकेश्वरवाद, किज्ब अर्थात झूठ, बिदअत अर्थात धर्म में अपनी ओर से नई बातें जोड़ना। अगर कोई वहाबियों द्वारा वर्णित केवल कुफ्र व शिर्क के शब्दों को एकत्रित करे तो उसी से पूरी एक किताब भर जाएगी। जब भी कोई मुसलमान उनके जवाब में किसी हदीस के माध्यम से उनकी बात को रद्द करता है तो वे उसके उत्तर में हर तर्क से अधिक झूठ है वाक्य का सहारा लेते हैं। वे हर उस हदीस को झूठला देते हैं जो उनकी आस्थाओं से मेल नहीं खाती।
कुल मिलाकर ये कि वहाबी अपनी चरमपंथी व खोखली आस्थाओं के चलते खुलकर या इशारों में अपने आप को और अपने अनुयायियों को एकेश्वरवादी व मुसलमान बताते हैं और मुसलमानों के अन्य गुटों को अनेकेश्वरवादी व काफिर कहते हैं। इस आधार पर वे उनकी हत्या को भी वैध और उनके माल को हलाल समझते हैं। बहरहाल मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और मोहम्मद बिन सऊद के आपसी रिश्तों से दोनों को काफ़ी लाभ पहुँचा। एक और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने मुसलमानों की आस्थाओं से लड़ने के अपने लक्ष्य को प्राप्त किया तो दूसरी ओर मोहम्मद बिन सऊद ने इन हालात से अपनी शक्ति फैलाने के लिए लाभ उठाया। इस रिश्ते में जो बात रोचक है वो सीमाओं और अधिकारों का सटीक बंटवारा है। इस अर्थ में कि आरंभ से ही धार्मिक मामले मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और उनके परिवार या आले शेख के हाथ में रहे और राजनीति व सरकार संबंधी मामले मोहम्मद बिन सऊद और उनके परिवार या आले सऊद के पास रहे। श्रोताओं, अगले कार्यक्रम में हम आले सऊद और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के बीच रिश्ते स्थापित करवाने में अंग्रेजों की भूमिका और उनके द्वारा वहाबियत के खुले समर्थन के बारे में बात करेंगे। सुनना ना भूलिएगा।